भगवते वासुदेवाय भगवतम चौथा स्कंद छठा अध्याय ब्रह्मा द्वारा शिवजी को मनाना श्लोक संख्या 36। लिंगम च तापसाभीष्टम् भस्मदण्डजटाजिनम् अंगेन संध्याभ्ररुचा चंद्रलेखां च विभ्रतम्। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा अनुवाद। वे मृग चर्म पर आसीन थे और सभी प्रकार की तपस्या कर रहे थे। शरीर में राख लगाए रहने से वे संध्याकालीन बादल की भांति दिखाई पड़ रहे थे। उनकी जटाओं में अर्धचंद्र का चिन्ह था, जो सांकेतिक प्रदर्शन है। तात्पर्य, शिव की तपस्या के चिन्ह वैष्णव जैसे नहीं होते। वे सर्वश्रेष्ठ वैष्णव तो हैं, किंतु वे मनुष्यों की ऐसी विशेष श्रेणी के लक्षण प्रदर्शित करते हैं जो वैष्णव नियमों का पालन नहीं कर सकते। शिव के अनुयायी शैव सामान्यतः शिव की भांति वेश बनाते हैं और कभी कभी वे मादक द्रव्यों का सेवन करते हैं। वैष्णव धर्म के अनुयायी ऐसी आदतों को कभी स्वीकार नहीं कर सकते। अनुवाद को दोहराइएगा। हरे कृष्णा। वे मृग चर्म पर आसीन थे और सभी प्रकार की तपस्या कर रहे थे। शरीर में राख लगाए रहने से वे संध्याकालीन बादल की भांति दिखाई पड़ रहे थे। उनकी जटाओं में अर्थचंद्र का चिन्ह था, जो सांकेतिक प्रदर्शन है। तो बहुत ही सुंदर तरीके से यहाँ वर्णन हो रहा है। प्राय कविता के समान सुंदर भाषा है। वर्णन हो रहा है कि किस प्रकार शिवजी सारे देवताओं को दिखाई पड़ रहे थे। उनके अलग अलग लक्षणों का, चिन्हों का वर्णन हो रहा है। शिवजी तो आदर्श वैष्णव है ही, लेकिन वो आदर्श तपस्वी भी हैं। तपस्या करना है तो शिवजी जैसे करना है। शिवजी जब तपस्या में बैठते हैं तो उनकी तपस्या कभी भंग नहीं होती है। हम देखते हैं कि इतिहास में इतने सारे बड़े बड़े तपस्वी हुए, कई तपस्वियों के तपस्या भंग हो गई। जैसे विश्वामित्र मुनि हुए, सौभर मुनि हुए इत्यादि। लेकिन शिवजी, इनकी तपस्या कभी भंग नहीं हुई। आपको कथा मालूम है, जब कामदेव ने शिवजी की तपस्या भंग करने का प्रयास किया और अपने क्रोध से अपने ललाट के ऊपर, कपाल के ऊपर जो तीसरा नेत्र है, आंख है, उसे खोलकर कामदेव को जलाकर राख बना दिया। तो इस प्रकार से शिवजी को धीर कहते हैं। धीर क्योंकि उनकी इंद्रियां बिल्कुल उनके वश में हैं। तपस्या से कभी वो हटते नहीं हैं। लेकिन इनके जो चिन्ह हैं, वो ऐसे तपस्वी के तरह हैं जो वैष्णव दिखते नहीं हैं। इसलिए प्रभुपाद जी यहां बताते हैं कि वैष्णवों को शिवजी की तरह पोशाक नहीं पहनना चाहिए। या शिव जी के कार्यों का नकल नहीं करना चाहिए, क्योंकि शिव जी साधारण व्यक्ति नहीं है, वो कोई असाधारण व्यक्ति असाधारण जीव भी नहीं है, वास्तव में तो वो जीव नहीं है, वो अलग श्रेणी में है, वो ना तो जीव तत्व कहलाते हैं और ना ही वो विष्णु तत्व कहलाते हैं, उनकी श्रेणी अलग है और इस श्रेणी को शिव तत्व कहते हैं। इस श्रेणी में अंतर यही है कि यह है वास्तव में मूल रूप से विष्णु तत्व, लेकिन क्योंकि उन्होंने यह भौतिक संसार के तमोगुण से स्पर्श किया हुआ है, इसलिए वो विष्णु तत्व नहीं रहते हैं। विष्णु तत्व वो हैं जो हमेशा हमेशा विशुद्ध सत्व में रहते हैं। विशुद्ध सत्व मतलब जो तीन गुणों के परे रहते हैं, शुद्ध सत्व गुण। अब ये संसार में तीन गुण हैं, जैसे आप जानते हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। लेकिन ये तीन गुण जो होते हैं ये अपनी शुद्धता में नहीं रहते हैं। जो तमोगुण है वो शुद्ध तमोगुण नहीं होता, उसमें थोड़ा रजोगुण और सत्वगुण का मिश्रण होता है। उसी प्रकार से जो रजोगुण है वो शुद्ध रजोगुण नहीं होता, उसमें तमोगुण और सत्वगुण का थोड़ा मिश्रण होता है। ठीक उसी प्रकार से जो सत्वगुण होता है वो भी शुद्ध सत्वगुण ये संसार में नहीं पाया जाता, इसमें भी तमोगुण और रजोगुण का थोड़ा मिश्रण होता है। तो ये संसार में जो तीन गुण अपने आप में एक दूसरे में ऐसे मिले हुए हैं, इस प्रकार से उनका मिश्रण हुआ है कि किसी एक को आप बिल्कुल शुद्ध रूप से अलग नहीं कर सकते। तो यहां पर संसार में हम सब इन तीन गुणों से प्रभावित हैं, क्योंकि हम ये तीन गुणों के स्पर्श में हैं। तो शिव जी ने तमोगुण का स्पर्श किया है, इसलिए वो विष्णु तत्व नहीं कहलाते। लेकिन विष्णु जो है वो शुद्ध सत्व में स्थित है, वो ऐसे सत्वगुण में स्थित नहीं है जिसका मिश्रण तमोगुण और रजोगुण से है। विशुद्ध सत्व, विशुद्ध सत्व मतलब तीन गुणों के परे है वो। और ये जब संसार के स्पर्श में आते हैं तो विष्णु तत्व नहीं कहला सकते, इसलिए उनके लिए अलग श्रेणी बनाई गई है। ब्रह्म संहिता में जैसे वर्णन है दूध और दही का, तो दही दूध ही है लेकिन फिर भी अलग भी है। उसी प्रकार से शिवजी भगवान विष्णु से एक भी हैं और अलग भी हैं। तो ऐसे शिवजी एक जगह में बैठकर तपस्या करते हैं, भगवान के ऊपर ध्यान करते हैं, लेकिन इनके जो चिन्ह हैं जो यहां इस श्लोक में हम पढ़ रहे हैं वो बड़े विचित्र हैं। यह बताया जाता है कि उनके शरीर में सब तरह के जो राख है वो लगाए हुए हैं, और ये राख लगाने की वजह से उनका शरीर संध्याकालीन बादल की भांति दिखाई पड़ रहा था। तो ये शरीर में ऐसे राख, विशेष करके स्मशान का राख, कोई साधारण राख नहीं, स्मशान का राख, क्योंकि जो सबसे तमोगुण में जगह है वो है स्मशान, क्योंकि वहां भूत प्रेत ज्यादा से ज्यादा रहते हैं। तो ये सबसे ज्यादा तमोगुण में रहने वाला जो जगह है वो है स्मशान। तो स्मशान का जो राख है वो अपने शरीर पर लगा हुआ है, क्योंकि शिव जी हमेशा ऐसे जगह से घूमते रहते हैं। शिव जी क्यों जाते हैं ऐसे जगह में? क्योंकि वहां पे उनके भक्त रहते हैं ज्यादा, भूत प्रेत पिशाच, है ना। जिस प्रकार से भगवान कहते हैं ना कि मैं वहां हूं जहां मेरे भक्त रहते हैं, कहते हैं ना, नाहम तिष्ठामि वैकुंठे योगिनाम हृदयेषु वा, है ना, कि मैं वहां नहीं रहता, वैकुंठ में नहीं रहता हूं, मैं योगियों के हृदय में नहीं रहता हूं, तो मैं कहां रहता हूं? तत्र तिष्ठामि नारद यत्र गायन्ति मद्भक्ता, जहां मेरे भक्त मेरा कीर्तन करते हैं, गायन करते हैं, मैं वहां पर रहता हूं। ये स्वाभाविक है। हम देखते हैं कि ये संसार में भी हम उसी जगह जाना पसंद करेंगे जहां लोग हमारा गुणगान करते हैं, है ना। जहां लोग हमारी निंदा करते हैं क्या वहां जाने के लिए हम इच्छुक होते हैं? हम बोलते, किसी ने अगर हमारी निंदा की है तो हम बोलते इसकी यहां घर में हम नहीं जाएंगे, कहते हैं ना कभी गुस्सा होकर। लेकिन कोई हमारी प्रशंसा करता है कि इतने अच्छे भक्त हैं, इतना अच्छा सब उनके गुण हैं, ऐसा सब बोलते हैं तो हमें इच्छा होती है कि ये हमारा मित्र बन जाए, ये हमें समझ लिया इसने। यही वास्तव में आदमी जिसने हमें समझ लिया है, हमारे सद्गुणों को पहचान लिया है, ये स्वाभाविक है। तो उसके पास में जाके हम उसका संग करना पसंद करते हैं। तो ये गुण हमारे अंदर क्यों है? क्योंकि ये कृष्ण के अंदर है, और कृष्ण के अंदर है इसलिए शिव जी के अंदर भी है। तो शिव जी भी वहां जाना पसंद करते हैं जहां पर उनके भक्त एकत्र होते हैं। शिव जी का अवतार है, ये एक तमोगुण का अवतार है। भगवान का अवतार तमोगुण के स्पर्श करता हुआ, ये विशेष करके इसलिए है कि तमोगुण के अधीन जो जीव है, पतित जीव है, उनके उद्धार के लिए अवतार है। और तमोगुण में कौन है? ये भूत प्रेत पिशाच और अन्य प्रकार के जो मादक द्रव्यों का जो सेवन करने वाले जो लोग होते हैं, ऐसे लोगों के उद्धार के लिए शिवजी अवतार लेते हैं। तो इसलिए जो स्मशान भूमि में इधर उधर घूमते हैं तो ये राख सब उनके शरीर में लगे रहते हैं। और यहां वर्णन है कि ऐसे राख के शरीर पर लगने से उनका चेहरा सुंदर लग रहा है। अभी अभी हम अगर हमारे शरीर पे स्मशान का राख लगाएंगे तो हम सुंदर नहीं लगेंगे, लोग हमसे दूर भाग जाएंगे। लेकिन शिवजी जब ऐसे दिखाई पड़ते हैं तो बहुत सुंदर दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि शिवजी भी है, उनका शरीर भी है बड़ा सुंदर, दिखने में बड़ा सुंदर और तेजस्वी है, प्रकाशमान है। जैसे हम देखते हैं कि कृष्ण भगवान जब कुरुक्षेत्र के रणभूमि में थे तो उस समय वो रथ चला रहे थे, और आपको मालूम है कि रणभूमि पे इतने सारे घोड़े रथ चल रहे हैं, हाथी चल रहे हैं, लोग भी इधर उधर घूम रहे हैं, तो बहुत धूल हवा में उड़ जाती है। तो धूल उड़ती है तो शरीर पे धूल बैठ जाती है। तो उस समय भीष्म जो है वो दर्शन कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण का, और सुंदर तरीके से भागवत में उनका वर्णन करते हैं वो, विशेष करके तीसरे स्कंद में, कि किस प्रकार से श्री कृष्ण इतने सुंदर लग रहे हैं कि उनके चेहरे में ये रणभूमि का धूल जो है ये सब चेहरे में शरीर में लगी हुई है, और उनके ललाट में और उनके गालों पे पसीना है, पसीने के बूंद है। और इसका वर्णन करते हुए भीष्म देव उनका स्मरण करना चाह रहे हैं कि यही दृश्य मेरे मन में मृत्यु के समय हमेशा रहे, ताकि मैं प्राण त्यागूं तो ये दृश्य भगवान का मन में रखते हुए त्यागूं। तो हमारे ऊपर जब धूल लगता है, हमें पसीना आता है, तो हम कोई सुंदर दृश्य नहीं बनते हैं। कोई ऐसा नहीं कहता कि हम आपको देखना चाहते हैं धूल से भरा हुआ, पसीने पसीने हुए, आपको देखना चाहते हैं, आप बहुत सुंदर लगते हैं, हमें ऐसा कोई नहीं कहता। लेकिन जब कृष्ण भगवान ऐसे होते हैं तो फिर उनका दृश्य बड़ा सुंदर लगता है। उसी प्रकार से शिवजी भी, शिवजी का भी दृश्य वहां बैठे हुए हैं, ऐसे एक शक्तिशाली, एक ऐसी शक्ति नजर आ रही है वहां। आखिर वो तो शक्ति के ही तो प्रभु हैं, स्वामी हैं। शक्ति मतलब दुर्गा देवी, माया देवी, और जो दुर्गा देवी की उपासना करते हैं, शक्ति की उपासना करते हैं, वो है शाक्त। और शिवजी हैं शक्तिमान, शक्ति के भी स्वामी हैं। इसीलिए शिवजी जब वहां बैठे हैं ऐसे नजर आ रहे हैं, बिल्कुल तेजस्वी, प्रकाशमान, शक्तिशाली, एक जगह बैठकर मृग चर्म पर आसीन हुए, वहां एक बड़ा अच्छा दृश्य लग रहा था सारे देवताओं को। और उनके शरीर पे कैसे चिन्ह थे, यहां बताया हुआ है कि उनके जटाओं में अर्धचंद्र का चिन्ह था। इसलिए भगवान शिव जी को कभी चंद्रशेखर भी बताया जाता है, अर्थात आधा आधा चांद। चांद भी है, ये भी एक मंगलकारी चिन्ह है, और आधा चांद भी एक शुभ लक्षण है, इसलिए ये भी शिव जी है। शिव जी का मतलब है जो सर्व मंगलकारी है, मंगलमय है, शिव का अर्थ ये होता है, तो इसलिए शिव जी के ऊपर ये मंगलमय एक लक्षण है। और इस प्रकार से शिव जी के गले में भी सांप है, जैसे हम कल बता रहे थे कि ये भी संकर्षण के प्रतिनिधि हैं, भगवान संकर्षण के, जो कि भगवान शिव के आराध्य देव हैं, पूजनीय देव हैं। तो इस प्रकार से शिव जी वहां बैठे हुए हैं और संध्याकालीन बादल के तमाम तरह चमक रहे हैं, और अलग अलग प्रकार के वो तपस्या कर रहे हैं वहां बैठे हुए। अब ये जो चिन्ह हैं, प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि वैष्णवों को इन चिन्हों का नकल नहीं करना चाहिए। जो शिव जी के भक्त हैं शैव, वो इनका नकल करते हैं, हम देखेंगे वो भी कभी कभी अपने शरीर में ऐसे नाना प्रकार की विभूतियां लगाते हैं और राख लगा देते हैं। फिर अपने भी हिमालय में जाएंगे आप तो ऐसे साधुओं को देखेंगे, जटाएं जो है वो लगाएंगे, योगी ऐसे जटाएं अपने बाल जटा में लगा देते हैं। जटाओं में वास्तव में योगियों की शक्ति होती है, कई बार भक्ति विनोद ठाकुर जी के जीवन में आपने देखा होगा, वो याद है विश्वक्षेण नाम का एक योगी था और उसके सारे योग शक्ति जो है उसके जटा में थी, और आखिर में एक पंडित ने समझ लिया कि हाँ इसकी जटाएं में है, और फिर भक्ति विनोद ठाकुर ने जाकर उसके बाल ही काट दिए। बाल काट दी तो सारी योग शक्ति उसमें चली गई। तो इस प्रकार से योगी लोग जो है वो बहुत जटाएं रखते हैं और उसको बांध कर ऐसे भड़के रखते हैं। तो इस प्रकार से आप हिमालय में जाएंगे तो आप देखेंगे कि शिव जी के भक्त ऐसे ही कपड़े, ऐसे ही पोशाक धारण किए हुए वहां पर घूमते फिरते हैं। और इतना ही नहीं, वो लोग फिर मादक पदार्थों का सेवन भी करते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि शिव जी ने ऐसे किया है तो हमें भी करना चाहिए। इसलिए शिवरात्रि के दिन आप देखेंगे कि बहुत भांग पीते हैं, भांग बनाते हैं और फिर भांग पीकर उसमें मस्त हो जाते हैं। बंबई में राधा गोपीनाथ मंदिर के पास में बड़ा शिव जी का मंदिर है, बाबुलनाथ जी का मंदिर है, तो वहां हम देखते हैं शिवरात्रि के समय ये सारे बाबा नागा कहाँ कहाँ से आ जाते हैं सब, और कोई चिल्लम पी रहा है, कोई हुक्का पी रहा है, तो कोई क्या क्या पीते हैं, क्या नहीं सेवन करते हैं। और लोग समझते हैं, जन साधारण है वो तो मासूम, उनको ज्ञान नहीं है, वो सोचते हैं कि ये शिव जी के बड़े भक्त हैं, दान देते हैं, समझते नहीं है। तो वैष्णवों को ऐसे नहीं करना चाहिए। वैष्णवों के चिन्ह जो होते हैं वो बिल्कुल अलग होते हैं। क्यों? क्योंकि वैष्णव स्थित होते हैं सत्वगुण में, और विशेष करके शुद्ध सत्वगुण में, इसलिए जो भी लक्षण होते हैं, चिन्ह होते हैं, वो सत्वगुण के चिन्ह होते हैं। इसलिए दीक्षा के समय, दीक्षा का जो पद्धति है वैष्णव परंपरा में, उसे पंच संस्कार कहते हैं। पांच प्रकार के संस्कार होते हैं उसमें। सबसे पहली बात है कि उसे हरिनाम दिया जाता है, नाम। तो नाम जब मिल जाता है तो फिर वो माला जाप करने लग जाता है। फिर दूसरी बात ऊर्ध्वपुंड्र, ऊर्ध्वपुंड्र मतलब, ऊर्ध्व मतलब ऊंचा, पुंड्र मतलब निशानी, तो ये ऊर्ध्वपुंड्र को, तिलक को ऊर्ध्वपुंड्र कहते हैं। शरीर में 12 जगह हम चिन्ह लगाते हैं, तिलक, तिलक के चिन्ह जो ऐसे हैं, और लगाते लगाते हम भगवान श्री कृष्ण के अलग अलग नाम वहां हम कहते हैं, उनका उच्चारण करते हैं, और ताकि अलग अलग शरीरों का लक्षण हो। ये एक प्रकार का कवच भी है हमारे आध्यात्मिक जीवन की रक्षा करने के लिए, हमारे शरीर की रक्षा करने के लिए। तो ये 12 चिन्ह जो है तिलक के, ये वैष्णव के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। बताया जाता है कि कोई व्यक्ति अगर तिलक को देखे भी तो उसका, उसके कई पाप खत्म हो जाते हैं। केवल तिलक देखने मात्र से ही आदमी के पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए इतना महत्वपूर्ण है ये तिलक लेना। और खुद अपने आप को हम देखेंगे फिर भी हमारा फायदा होगा, आईने में देखते हैं कम से कम तिलक देखते हैं, क्योंकि लोगों को अपने आप को आईने में देखना बहुत शौक होता है ना लोगों को, तो कम से देखेंगे तिलक देखेंगे उसमें तो फायदा होगा कम से कम। तो इस प्रकार से तिलक की निशानी ये बहुत महत्वपूर्ण होती है। फिर तीसरा है मुद्रण। मुद्रा ये होते हैं, आप देखेंगे कि वृंदावन में अगर आप गए हैं कई ऐसे बाबा जी आप देखेंगे जो महामंत्र या ऐसे राधे श्याम या श्री राधा या श्री कृष्ण ऐसे मुद्रण लगाते हैं शरीर पे अलग अलग जगह, वो छाप मिलता है, फिर छाप शरीर के अलग अलग जगह लगाते हैं, आपने देखे है? तो उस प्रकार से ये तीसरा है, ऐसे संस्कार दिया जाता है। फिर चौथे हैं मंत्र दिए जाते हैं जो उपासना के लिए, भगवान की अर्चा विग्रह की पूजा के लिए, आराधना अर्चना के लिए किए जाते हैं। तो इस प्रकार से अलग अलग चिन्ह होते हैं वैष्णव के, और इन चिन्हों और फिर कंठी माला वगैरह पहनते हैं हम, कंठी माला पहनते हैं और फिर हमारे हाथ में गले में ये लटका हुआ होता है माला, जाप करने की माला है, और फिर वैष्णव जैसे पोशाक पहनते हैं, कभी धोती कभी कुर्ता, हाँ शहरों में बीच बीच में पैंट शर्ट भी हो जाता है, लेकिन ये सब चिन्ह है वैष्णव के। तो कभी कभी लोग कहते हैं कि ये सब दिखावे की बात क्यों है, क्यों, ये तो धर्म है, ये तो अपने अंदर की बात होनी चाहिए, है ना, अपने घर के अंदर जो चाहे वो कीजिए, लेकिन बाहर समाज में जाके ये सब तिलक लगाना, कंठी माला ये पहनना, गले में माला ये लटका के जाना, ये सब दिखावे की बात है, ये सब करने की क्या आवश्यकता है? आवश्यकता बहुत है। सबसे पहली बात अपने आप को बचाने के लिए, क्योंकि जब हम ये सब लक्षण धारण करके हम सब जगह घूमते हैं शहर में गांव गांव में, तो फिर हमारे लिए एक प्रकार का इंश्योरेंस पॉलिसी है, मतलब हमारे लिए एक संरक्षण के समान है कि हम कहीं कुछ गलत काम ना कर बैठे। कम से कम गलत काम करने से पहले हम सोचेंगे भाई हमने वैष्णव के जैसे पोशाक पहना है, अभी लोग देखेंगे तो क्या बोलेंगे क्या कहेंगे, हमारी निंदा तो डबल करेंगे ही, साथ साथ संस्था की निंदा करेंगे, कृष्ण भगवान की निंदा करेंगे, भक्तों की निंदा करेंगे, तो ये सब ठीक नहीं है, तो हम रोक जाते, अपने आप को रोक लेते हैं। तो इसलिए अपने लिए अच्छा है कोई बुरा काम करने के पहले। लेकिन कभी कभी हमारे भक्त जो है ये भी नहीं सोचते हैं, सोचना चाहिए, हम जब कोई भी कार्य करते हैं तो हमें सोचना चाहिए कि भाई हम तिलक पहना हुआ है, वैष्णव जैसे पोशाक हमने पहने हैं, इसलिए ऐसे कोई कार्य नहीं करना चाहिए जिससे लोग निंदा करना शुरू करें। वैसे भी ये समय ऐसा है कलयुग का कि लोगों की श्रद्धा बिल्कुल कम है, तो ऐसे अवस्था में हमारा कर्तव्य होता है कि ऐसा हम कोई कार्य न करें जिससे लोगों की श्रद्धा और भी कम हो जाए, वैसे भी बहुत कम है, और भी कम करें तो ये उनके प्रति हम बहुत बड़ी हिंसा कर रहे हैं। हिंसा मतलब केवल शारीरिक हिंसा नहीं होती है, श्रद्धा के ऊपर जो हिंसा की जाती है वो सबसे बड़ी हिंसा है। और ये कौन सी हिंसा है कि जब हम किसी के प्रति, किसी के हृदय में भगवान श्री कृष्ण के प्रति, वैष्णवों के प्रति, वैष्णव शास्त्रों के प्रति हम श्रद्धा कम करा देते हैं, तो ये हिंसा कहलाती है। तो इसलिए हमारा व्यवहार हमेशा आदर्श प्रमाणिक होना चाहिए, ऐसा हमारा प्रयास होना चाहिए। तो इस प्रकार से ये पहली बात, हमारे रक्षण के लिए, हमारे भलाई के लिए हम ये चिन्ह धारण करते हैं। और दूसरी बात है कि दूसरों के भलाई के लिए, क्योंकि जब वो चिन्ह देखते हैं, देखने मात्र से ही उनका शुद्धिकरण होता है, ये एक बात है, और दूसरी बात जब ये चिन्ह देखते हैं तो उनके हृदय में जिज्ञासा जागृत होती है, वो देखते हैं भगवान को याद करते हैं, हाँ ये कृष्ण का भक्त है, ये वैष्णव है, देखो ये हरे कृष्ण वाले, हरे राम हरे कृष्ण वाले जा रहे हैं, तो उनके मुख से तो निकले ना राम और कृष्ण का शब्द तो निकला ना। कई बार मुसलमान लोग भी बोलते हैं हरे राम हरे कृष्ण वाले जा रहे हैं, या क्रिश्चियन लोग भी बोल सकते हैं, या हिंदू लोग जो नास्तिक है वो भी बोलेंगे हरे राम हरे कृष्ण वाले आए। अगर आप यूं ही साधारण व्यक्ति की तरह इधर उधर घूमते तो उनके मुख से कृष्ण राम का नाम नहीं निकलता, लेकिन आपने तिलक पहना हुआ है, कंठी माला है, ये सब देखते हुए लोग कहते हैं देखो हरे कृष्ण हरे राम वाला जा रहा है, तो दूसरों का फायदा हुआ कि नहीं हुआ? भले वो मजाक से कहें, भले कुछ भी किसी भी भावना से क्यों ना कहें, लेकिन उन्होंने भगवान के नाम का उच्चारण किया हुआ है, इसलिए इसमें उसका लाभ होता है। और इसके अलावा जब वो देखते हैं कि भगवान का भक्त जा रहा है, जो जिज्ञासा उनके अंदर रहती है वो आके उसको पूरा तृप्त करना चाहते हैं, आते हैं भक्त के पास, अरे आप कौन से संस्था के हैं, आप हरे कृष्ण हरे राम संस्था के हैं क्या, अच्छा आप भगवद गीता पढ़ते हैं, कौन से शास्त्र पढ़ते हैं, प्रचार का मौका मिल जाता है। इस प्रकार से हम लोगों को भगवान के बारे में बता सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं। तो ये सब चिन्ह है। और सर मुंडवा लेना, ये भी एक महत्वपूर्ण चिन्ह है। प्रभुपाद जी जो है वो एक बार गए थे अमेरिका में, तो आप जानते हैं कि वहां जिस प्रकार से लोग पोशाक पहनते हैं उनके चिन्ह तो अलग ही होते हैं, बिल्कुल है ना, अलग अलग प्रकार के पोशाक तो क्या कम ही पहनते हैं। तो एक बार एक महिला पत्रकार उनके पास आई थी, तो बहुत कम पोशाक पहना हुआ था, तो प्रभुपाद जी बड़े हैरान हो गए लेकिन कुछ बोला नहीं। तो उन्होंने बहुत प्रश्न किए और प्रभुपाद जी ने बड़ी ही निपुणता से अच्छे अच्छे जवाब दिए प्रश्नों के, सुंदर सुंदर जवाब दिए। फिर आखिर में वही प्रश्न आता है जब पत्रकार हैरान हो जाते हैं कि सारे सवालों का जवाब इतनी अच्छी तरह से दिया है, कोई ऐसा प्रश्न पूछना चाहिए जिसका जवाब ये नहीं दे सकते हैं, हैरान होकर ऐसे कुछ ना कुछ उल्टे सीधे प्रश्न करना चाहते हैं। तो आखिर में उनका रहा है एक प्रश्न, आप लोग सर क्यों मुंडवा लेते हैं, क्या बात? तो प्रभुपाद जी ने कहा कि आप लोग पैर ऐसे खाली क्यों ढका हुआ नहीं छोड़, क्या कहते हैं, पैर क्यों नंगे हैं आपके ऐसे, इसलिए हमारे सर हमने मुंडवा लिया है। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं ठंडा सर हो और गर्म पैर हो, लेकिन आप लोगों का गर्म दिमाग और ठंडे पांव, पांव में कोई कपड़े नहीं है, कई कपड़े नहीं, ऐसे ही घूमते फिरते हो, इसलिए पांव सब ठंडे ठंडे और सर जो है गरम गरम, लेकिन हम सर मुंडवा लेते हैं ताकि सर ठंडा हो, ठंडे दिमाग से हम अच्छी बातें सोच सकते हैं, और पैर गरम गरम ताकि सर्दी ना हो कुछ ना हो। तो इस प्रकार प्रभुपाद जी ने उनको चुप करा दिया, फिर वो भी हंसने लगे, समझ लिया कि मैं हार गई अभी, और फिर ऐसे उल्टे सीधे प्रश्न नहीं किए। तो ये भी एक लक्षण है हमारा, ठंडा दिमाग ले जाते, नहीं तो बहुत सारे लंबे लंबे बाल हो जाते हैं, तो फिर इसमें दिमाग जो है गर्मी बढ़ जाती है ना। तो इस प्रकार के अलग अलग लक्षण हैं, इनसे भी लोग पहचानते हैं कि इन्होंने सर मुंडवाने वाले लोग हैं, घूमते फिरते हैं इधर। तो ये वास्तव में ये भी एक भक्त के लक्षण होते हैं। और विशेष तरह के जब हम सर मुंडवाते हैं तो ये वैराग्य का लक्षण होता है। वैराग्य के दो प्रकार के लक्षण हो सकते हैं, जैसे शिवजी हैं, शिवजी तो अपने बाल लंबे छोड़ते हैं फिर जटा में बांध लेते हैं, ये एक प्रकार का लक्षण है वैराग्य का। दूसरे प्रकार का लक्षण है कि बाल को बस यूं ही छोड़ना, दाढ़ी मूंछ और बाल सब जितने उगने उगने दें। लेकिन ऐसे लक्षण से क्या होता है कि प्रचार के लिए ये अच्छा नहीं है। मान लीजिए आप जटा बांध कर ये सब धूली वगैरह लगाकर सांप अपने गले में लपेट कर प्रचार के लिए जाएंगे, कौन आपको सुनने आएगा, सब भाग जाएंगे वहां से। लेकिन जब आप साफ सुथरे रहेंगे, सब सर मुंडवा कर बड़े अच्छी तरह से स्वच्छ होकर जाएंगे, फिर लोग आपके पास में आना भी पसंद करेंगे। उसी प्रकार से जो हम पोशाक भी पहनते हैं उससे भी लोगों को हम भगवान का स्मरण कराना चाहते हैं। हमें देखने से ही लोगों को भगवान की स्मृति हो, स्मरण हो, ये जब चिन्ह है वैष्णव के, और यही सब उद्देश्य होता है। इसलिए हमारा पोशाक, हमारे जो चिन्ह हैं, उनके तीन कारण होते हैं या तीन उद्देश्य होते हैं। एक है कि बहुत सरल होना चाहिए, दूसरा है कि बहुत स्वच्छ होना चाहिए, और तीसरा है कि जो भी आदमी इसे देखे उसे भगवान का स्मरण हो। बस यही बातें हैं। तो जो भी लक्षण हमारे होते हैं इनका इनके उद्देश्य यही होते हैं, इसके अलावा और कोई चौथा कारण नहीं है। तो प्रभुपाद जी वहां हमें चेतावनी दे रहे हैं कि शिवजी जैसे लक्षण ग्रहण कर रहे हैं या चिन्ह है उनके पास में, उनका नकल हमें नहीं करना चाहिए। विशेष करके जो शिव भक्त हैं, जो भांग इत्यादि पीना पसंद करते हैं, प्रभुपाद जी बताते हैं पहले उनको कम से कम विष का एक बूंद तो पी लेने दीजिए। अगर विष पी सकते हैं जैसे शिवजी ने पिया, फिर वो शिवजी की तरह वो भांग भी पी सकते हैं, क्योंकि शिवजी ने सारा विष का सागर समुद्र मंथन के समय उन्होंने उसका पान कर लिया और अपने कंठ में धारण कर लिया, इसलिए शिवजी का नाम है नीलकंठ। क्या हम वो कर सकते हैं? अगर शिवजी की नकल इस तरह नहीं कर सकते तो फिर भांग इत्यादि पीकर भी नहीं करना चाहिए। जिस प्रकार से श्री कृष्ण की का नकल हमें रासलीला में नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम गोवर्धन पर्वत को धारण नहीं कर सकते हैं, है ना। तो इसलिए प्रभुपाद जी यहां ऐसी बात की चेतावनी दे रहे हैं। तो फिर आगे हम पढ़ने वाले हैं कल से कि किस प्रकार से, हालांकि शिवजी के वैष्णव है लेकिन इनके बाहरी चिन्ह जो है उनके भक्तों के लिए उन्होंने ऐसे रखे हुए हैं, इसलिए इनका नकल हमें नहीं करना चाहिए। हमें केवल वैष्णव के चिन्हों को प्राप्त करना चाहिए, और जैसे वैष्णव भजन कीर्तन करते हैं हमें भी ऐसे महान वैष्णव के पद चिन्हों में चलने का प्रयास करना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। कोई टीका टिप्पणी प्रश्न प्रकार के होते हैं, कोई बता सकते हैं तपस्या कितने प्रकार के होते हैं? अनगिनत तो है लेकिन फिर भी विभाजन कर सकते हैं, तीन प्रकार के। कौन से तीन प्रकार के तपस्या हो सकते हैं? गुण के हिसाब से, सत्वगुण की तपस्या, तमोगुण की तपस्या, रजोगुण की तपस्या, अलग अलग गुणों में तपस्या होती है। हिरण्यकश्यप, रावण, इन्होंने भी भयंकर तपस्या की, लेकिन यह तपस्या तमोगुण और रजोगुण की है। तमोगुण की क्यों? तमोगुण की तपस्या वो है जिसमें शरीर को बहुत अत्यधिक कष्ट दिया जाता है। इसमें शरीर के प्रति बहुत हिंसा होती है, और इससे ये हिंसा जो है अपने आप के प्रति ही नहीं परमात्मा के प्रति भी होती है। तो ऐसी हिंसा, ऐसे तपस्या को तमोगुणी तपस्या कहते हैं। जैसे योगी हैं वो किले के शैया पे लेटते हैं और ऐसे बहुत ही ज्यादा कष्ट देते हैं अपने आप को, वो तमोगुण की तपस्या है। रजोगुण की तपस्या क्या है? जो भौतिक भोग के लिए किया जाता है, सुबह से रात तक परिश्रम करना, पैसा भोग कमाने के लिए, भोग करने के लिए सुबह से रात तक काम करते हैं, ये रजोगुणी तपस्या है। अपनी जान को भी खतरे में डाल देते हैं, है ना, ताकि पैसा ज्यादा मिल जाए, ये रजोगुण की तपस्या है। और सत्वगुण की तपस्या क्या है? वो शुद्ध सत्व की तपस्या है। तमोगुण सत्वगुण की तपस्या मतलब अध्ययन करना, बैठकर सुबह जल्दी उठना, साफ सुथरा रहना, ये सारी चीजें सत्वगुण की तपस्या है। तो शुद्ध सत्व आध्यात्मिक स्तर की जो तपस्या है, तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्वम शुद्ध ये ब्रह्म सौख्यम तुरंतम, ये तपस्या है जिससे हमें आध्यात्मिक आनंद की प्राप्ति हो, कृष्ण भक्ति की प्राप्ति हो। तो अगर हमें तपो दिव्यम करना है, दिव्य तपस्या करना है, तो हमें कम से कम सत्वगुण में स्थित होना चाहिए। सत्वगुण में स्थित होकर सत्वगुण की तपस्या भी आ जाती है इसमें, क्योंकि हम तपो दिव्यम करते हैं फिर भी हम जल्दी सुबह उठते हैं, जल्दी स्नान कर लेते हैं, स्वच्छ रखते हैं अपने आप को, लेकिन सत्वगुण से भी थोड़े अधिक हैं ऐसे कार्य जो हम करते हैं, और इनको तपो दिव्यम कहते हैं। भगवान के नाम का जाप और कीर्तन करना, गीता भागवत पढ़ना, सत्संग में आकर कृष्ण कथा का श्रवण करना, भगवान के अर्चा विग्रह की पूजा आराधना करना, भगवान का प्रसाद का सेवन करना, ये सब आध्यात्मिक कार्य है, शुद्ध सत्व के कार्य है। ठीक है, और कोई तपस्या का फल तुरंत मिलता है, आध्यात्मिक तपस्या का फल बाद में आता है, इसलिए संशय होता है कि आएगा कि नहीं आएगा फल। लेकिन भौतिक तपस्या का फल भी तुरंत नहीं आता, तुरंत आता है। अभी आप व्यवसाय चालू कर रहे हैं, कितना तपस्या करना पड़ता है एक व्यवसाय, छोटा सा व्यवसाय चालू करने के लिए। और फिर ऐसा नहीं है कि मुनाफा जो है, प्रॉफिट जो है, पहले महीने से ही आएगा, 2 साल 3 साल अगर बिजनेस चला अच्छी तरह से तो फिर प्रॉफिट आ सकता है। लेकिन उसके लिए कितनी तपस्या करनी पड़ती है, बिजनेस चालू करने के लिए, तैयारी करने के लिए, है ना, तो इसमें भी तपस्या है। लेकिन फिर भी आध्यात्मिक दृष्टि की, आध्यात्मिक तपस्या से तुलना की जाए तो हाँ थोड़ा बहुत जल्दी आ जाता है। लेकिन आध्यात्मिक तपस्या में भी फल तो आपको मिल जाता है धीरे 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 से, वो फल चख लेते हैं आप, चखते हैं ना थोड़ा थोड़ा, वो आध्यात्मिक जीवन का मिठास तो मिल जाता है ना। इसलिए तो आनंद है, सब लोग आते हैं सुबह सुबह उठकर आते हैं, आप लोग क्यों आते हैं, कुछ तो मिलता है ना इसमें। अगर इसमें थोड़ा कुछ रस नहीं मिलता, थोड़ा कुछ फल नहीं मिल जाता आपको, तो आप क्यों आते, आप निद्रा रस का आस्वादन करते है ना, वो भी एक रस है, लेकिन यहां क्यों आते हैं, क्योंकि कुछ तो मिल रहा है, तो फल तो मिलता है इसमें भी। लेकिन भगवान थोड़ा 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 हमें देते हैं, जितना हमारी योग्यता है उतना हमें दे देते हैं चखने के लिए, ताकि हमारा लाल, हमारी लालच बढ़ जाए, और चाहिए और चाहिए और चाहिए। तपस्या का फल दिखता है, लेकिन आध्यात्मिक तपस्या का फल नहीं दिखता है, वो भी दिखता है, क्यों नहीं दिखता है आप देखते ना, देखिए सबके चेहरे, देखिए कितने खुश नजर आते हैं, कितने प्रकाशमान है सबके चेहरे, एक भी रोता हुआ चेहरा दिखाई दे रहा है, यहां देखिए घूम के देखिए। लेकिन बाहर जाइए सबके चेहरे देखिए, सब छोटे उदास है ना, उदास चेहरे, तुरंत तो फल मिल जाएगा।
पहले का फोटो और अभी का फोटो भी देखेंगे तो भी पता चलता है कि आनंद मिल रहा है
या नहीं मिल रहा है। कई बार हमारे भक्त लोग ऐसे तुलना करते हैं पहले की फोटो और बाद की फोटो, तो कभी मजाक करते हैं कि पहले तो डाकू जैसे लगते थे, अभी तो बिल्कुल संत जैसे लगते हैं। तो फल तो नजर आता है ना, क्यों नहीं नजर आता है। रूपा जी ने बताया, हमने हिप्पी को हैप्पी कर दिया है सबको, हिप्पी लोग थे बड़े सारे बुरी आदतें थी, उनको हैप्पी कर दिया, बिल्कुल खुश कर दिया है। इस जीवन में भी आपको लगेगा आनंद लगेगा, दूसरों को भी नजर आता है आपके जीवन में इतना परिवर्तन होता है। कैसे कर सकते हैं इतना परिवर्तन आपके जीवन में, और भारत में सबसे बड़ी बात चाय छोड़ देना और मूछे उड़ा देना, अरे बाप कैसे सब कैसे हो सकता है। तो फल तो मिला है ना, इतनी जल्दी आ गया इसका फल। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, श्रील प्रभुपाद की।
रामचंद्र कन्हैयालाल गिरिवर धारी नंद दुलाल, अच्युत केशव श्रीधर माधव गोपाल गोविंद हरि। यमुना पुलिन में बंसी बजावे, यमुना पुलिन में बंसी बजावे, नटवर वेश धारी। जय गोविंद जय गोपाल केशव माधव दीन दयाल, जय गोविंद जय गोपाल केशव माधव दीन Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna